بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے بحرین کی انقلابی تحریک کے بارے میں، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، بحرین کے عوام کی انقلابی تحریک فروری 2011 سے جاری ہے۔ بحرین کے عوام کی انقلابی تحریک کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے خلاف آل خلیفہ اور آل سعود اور ان کے مغربی آقا سب متحد ہیں۔ بحرین میں عوام نے اپنے بنیادی شہری اور انسانی حقوق کی بحالی اور سیاسی اصلاحات کے لیے پرامن تحریک شروع کی، جس کی سرکوبی کے لیے سعودی عرب سمیت خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن متعدد ملکوں نے اپنے فوجی بھیج دیے۔ لیکن مظلوم بحرینی عوام کی سرکوبی میں سب سے زیادہ درندگی کا مظاہرہ آل سعود کے فوجیوں نے کیا ہے۔ بحرین کے عوام کے ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ انہیں ان کی تحریک اور ان پر ہونے والے مظالم کو دنیا کی سول سوسائٹی، سماجی تنظیموں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافتی برادری سبھی نے نظر انداز کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بحرین میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہو۔ محضہ اور اکر نامی علاقے ایک سال سے زائد عرصے سے بحرینی اور سعودی فوجیوں کے محاصرے میں ہیں۔ دنیا کے جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ آل سعود اور آل خلیفہ کے فوجی راتوں کو بحرین کے رہائشی علاقوں پر حملہ کرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر زہریلی آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہیں۔ آج تک کسی بھی عالمی ادارے نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں پر حملہ کرنا، عورتوں اور بچوں کو وحشت زدہ کرنا غیر انسانی فعل ہے۔ تنہائی اور دنیا کی زبانی اور اخلاقی حمایت سے بھی محروم رہنا بحرین کے عوام کی دوسری بڑی مظلومیت ہے۔ لیکن بحرین کے عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے 14 اگست سے تحریک تمرد یعنی سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 14 اگست کو اس تحریک کے آغاز کا دن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اسی تاریخ کو برطانوی سامراج کے تسلط سے بحرین کو نام نہاد آزادی ملی اور آل خلیفہ کی حکومت اس ملک کے عوام پر مسلط ہو گئی۔ بحرین کی انقلابی تحریک نے انقلابی تحریکوں کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ 14 اگست سے شروع ہونے والی تحریک تمرد بحرین کی مکمل آزادی پر منتج ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہم بحرین کے عوام کی انقلابی تحریک کی نمایاں خصوصیات پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس ملک کے عوام کو دنیا نے تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی عوام نے انقلابی تحریک شروع کی، زبانی ہی سہی، دکھاوے کے لیے ہی سہی، ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا، لیکن بحرین کے عوام کے کو اس سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ دوسرے ملکوں میں عوام کی حمایت میں فوج بھیجی گئی۔ ایک بحرین ہی ایسا ملک ہے جہاں کے عوام کی حمایت میں نہیں، بلکہ آل اعلان ان کی سرکوبی کے لیے سعودی عرب سمیت مختلف ملکوں کی فوجیں بحرین بھیج دی گئی۔ بحرین کے عوام کا قصور کیا ہے کہ ان کی سرکوبی کے لیے دوسرے ملکوں کے افواج بھی پہنچ جاتی ہیں اور ان پر ہونے والے مظالم کا کوئی نوٹس بھی نہیں لیا جاتا، بلکہ پوری دنیا ظالم شاہی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے لندن اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر مخصوص صدیقی کو، ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا آغا مسعود حسین کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔ जी रिपोर्ट तैयार नहीं, चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां बरे सगीर के मुमताज दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर मकसूद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज उनसे करते हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब बहरीन के अवाम की इनकलाबी तहरीक फरवरी 2011 से तमाम तर नशेब व फराज के साथ जारी है, आपकी नजर में इस तहरीक की मुमताज खसूसियात क्या हैं?
देखिए, जैसा अभी आपने फरमाया था कि इसके जो एक खास जो एक खसूसियात में ये शामिल है कि ये बहुत ही पुरअमन तरीके से तहरीक इनकी शुरू हुई थी, और बल्कि ये जो तहरीक तो एक इस जो आप जैसा आपने कहा कि फरवरी 2011 में एक 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 ऊंचे लेवल के ऊपर आ गई
जी
थी, लेकिन अरसे दराज से आले खलीफा के खिलाफ तो एक तरह का एहतजाज होता ही रहा है,
जी
और उसको भी शुरू में आजकल में तो जैसा आपने फरमाया कि ना यहाँ वेस्ट में तो मैंने जो देखा ना यहाँ प्रेस ना टेलीविजन या कोई रिपोर्टिंग है ही नहीं, उसके सिलसिले में कोई जिक्र ही नहीं। जैसा आपने कहा कि ये मालूम ही नहीं होता कि वहाँ पे कितने लोग जाने दे चुके हैं, और जिस तरह से लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, खासतौर पे जो मेडिकल जो 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 डॉक्टर्स वहाँ पे हैं उनके साथ जो जो किया गया उसको हमको वो हम सबको मालूम है। लेकिन ये आप समझ लें कि ये जो ये इस तरह की तहरीक है तो बहुत अक्सर दराज से चलती चली आई है, और जिस तरह से एक तरह का मैं समझता हूँ इलीगल यानी गैर कानूनी तौर पे इस आले खलीफा ने हुकूमत जहाँ पे जमाई हुई है, जो कि अक्सरियत के जो अवाम है उनके खिलाफ, हर तरह से उनके खिलाफ और उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ और उनकी जो कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनके खिलाफ, और फिर उसके साथ साथ जैसा आपने भी इशारा किया था कि नाम निहाद तौर पे जब इनको बरतानिया की साम्राज्य हुकूमत से 1971 में आज़ादी मिली थी, दरअसल अगर आप इसमें देखें कि जो हुकूमत का जो असल बागडोर थी वो बरतानिया के लोगों के हाथ में थी। उससे पहले अगर हम हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाना चाहता तारीख में, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने उसको, हालांकि 1971 से पहले भी हुकूमत खलीफा के इनके कबीले के हवाले कर दी थी, लेकिन जो हुकूमत चलाने वाला था वो अंग्रेज़ थे। तो अब और वहाँ तो ये तो एक तरह का इंग्लिस्तान में और यूरोप में तो हम लोग ये समझते थे कि बहरीन जो है एक तरह की बरतानिया की एक कॉलोनी है, और वो उन्हीं के जो भी हुक्म है उन पे चलती है। और उसके साथ साथ अब ये देखें कि ये तो जैसा मैंने कहा कि एक तो बहुत अमर तौर पे ये मार्च में ये एहतजाज शुरू हुआ, और उसको जिस सख्ती के साथ दबाया गया, और जैसा आपने फरमाया कि और जैसा सबको दुनिया में इल्म है, सब लोगों को, कि सऊदी अरब से की फौजें बुलाकर जिसके अंदर फिर कतरी भी शामिल हैं और उनका पैसा भी शामिल है। और एक चीज़ और देखने वाली है कि जब से इनकी जो कॉजवे बनी थी बहरीन की और सऊदी अरब से जो 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 रोड का जो कनेक्शन था, उससे एक तरह का आप ये समझ लें कि जो बहरीन था वो सऊदी अरेबिया की एक तरह की कॉलोनी बन गया था, और उससे जितने भी नाजायज काम और गलीज चीज़ें जो थी वो बहरीन में आकर उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। इसका भी हम सबको इल्म है कि जुमेरात को वहाँ के ऊपर जो था पूरा कॉजवे के ऊपर ट्रैफिक जाम होता था, और फिर वो हफ्ते के दिन शाम रात में सब वहाँ से वापस जाते थे सऊदी। और ये जो बहरीन को इस तरह का एक जो टूरिस्ट का जो कैपिटल उसका जो जो बनाया गया है टूरिज्म सेंटर ऑफ मिडल ईस्ट, उसमें जो ज़्यादातर जो टूरिस्ट जो 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 आते हैं सैयाह जो आते हैं वो आपको आपको हमें मालूम है किस मुल्क से आते हैं। तो बहरहाल जहाँ तक इसका आपका जो सवाल उसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि ये एहतजाज ये बिल्कुल ये जो आवाम का जो एहतजाज है, जो आवाम की जो डिमांड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो बिल्कुल सही हैं। ये एक छोटा सा कबीला इतने सालों से, 200 साल से ज़्यादा से हुकूमत कर रहा है इस आइलैंड के ऊपर, और इसको और वो जो जो उनका जो पूरा का पूरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भी सऊदियों का या अमरीकों का या बरतानियों का जो उनका जो जो पूरा जो प्लान है उसके हिसाब से वहाँ पे चला जाए। जैसे कि हमको इल्म है कि हमारे अमरीका की फिफ्थ फ्लीट जो कि बहुत ही बड़ी फ्लीट बहरी उनका जो है वो अड्डा वो बहरीन में मौजूद है, और इसकी वजह से जो भी जो गलाजतें और जो खराबियां होती हैं, जो जब भी किसी भी अमेरिका ने जहाँ पर भी अपने अड्डे बनाए हैं हवाई या बहरी, उसकी वजह से जो जो उसके उसके असर जो हैं वो बहुत ही यानी बयान से बाहर हैं, तो वहाँ की आवाम को अब ये चीज़ अब ये नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि वो एक तरह के सही तरह की जमहूरियत वहाँ पे हो, और ये जो एक तरह का जो जो कबीले का जो रूल जो ये जो चल रहा है वो ख़त्म हो। और 2003 में मैं समझता हूँ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इन्होंने उसको बाकायदा मुलुकियत, अब ये पहले तो एक तरह का एक स्टेट थी, अब उसको मुलुकियत यानी किंगडम भी बना दिया इन लोगों ने। तो यानी बजाय इसके कि इनकी खलीफा की जो जो, जो खानदान है ये जो आवाम की जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी डिमांड्स को उसको उस पर कुछ चलने की कोशिश करता, उसके खिलाफ उन्होंने अब उसको एक तरह का जैसे कि सऊदी अरब एक किंगडम है, मलुकियत है, बादशाहियत है, वहाँ के यहाँ के भी उन्होंने वही कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल दो उनके जो फैमिली उनके जो खानदान के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से जो कानून वगैरह बदलते रहते हैं। मैं छोटी सी बात यह है, देखिए कि जो पुलिस के जो चीफ हैं उनसे अभी हाल में इनकी वजीर आजम की गुफ्तगू हुई, और उन्होंने कहा कि कोई भी कानून आपके पे आप किसी को आपको कहीं पुलिस चीफ को किसी कानून पर चलने की ज़रूरत नहीं है, और जो जी चाहे वो जैसा एक्शन चाहे वो लें, और उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब ये तो एक तरह का मिलिट्री डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा एक हद में एक तो ये है, जबकि देखा जाए कि 100 से ज़्यादा लोग इतने छोटे से मुल्क में अभी तक इसमें पुरअमन जो जो इनके जो वो हो रहे हैं जब उसके उसमें जान दे चुके हैं। पुलिस से पुलिस के चीफ से जो वहाँ का वजीर आजम ये बात कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, आपको किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, आपको जो जी चाहे करें जिस तरह से भी हो आप इस इन लोगों को दबा के रखें। तो जैसा आपने फरमाया कि जो मनामा के जो इर्द गिर्द जो गाँव हैं उसमें अब आए दिन वहाँ के ऊपर रात में इनके पुलिस वालों के हमले होते रहते हैं, जिससे लोगों को वो ना सिर्फ जो उनकी जो जहरीली गैसें हैं वो वहाँ फेंकते हैं, बल्कि उनको घरों से उठा उठा के ले जाके जेल में डाल देते हैं। ख़ास तौर पर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो जो मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इनका उन्होंने सख्ती की है, और पता नहीं डॉक्टरों को बेतहाशा बंद कर दिया, जेलों में डाल दिया है, और यानी ख्वातीन के साथ ज्यादती की है। तो ये तो मैं अगर मुझे कोई शक नहीं है कि इस ये जो खलीफा की इनकी जो आल खलीफा इनकी जो हुकूमत है ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये चाहे कितना सऊदी अरब से या अमेरिका से या बरतानिया से या कतर वगैरह से मदद लें, लेकिन जो आवाम जो है वो अक्सरियत आवाम नहीं चाहती इनको, और वो दिन मैं समझता हूँ ज़्यादा दूर नहीं है कि जबकि इनको हटना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहाँ पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार सफदर रजा साहब मौजूद हैं। सफदर रजा साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम
जनाब। ये आले खलीफा से आले सऊद का रिश्ता क्या है कि बहरीन में इनकलाबी तहरीक शुरू होते ही मनामा में लोगों के जमा होने के बाद पर्ल स्क्वायर पर जिस तरह से पुरान तौर पर लोग जमा हो रहे थे और सियासी इस्लाहात और जमहूरी इस्लाहात का मुतालबा कर रहे थे, इस तहरीक का आगाज होते ही आले सऊद के फौजी वहाँ पहुँच गए, और भी दूसरे मुल्कों के फौजी वहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर आवाम की सरकोबी में आगे आगे आले सऊद के फौजी हैं, तो इनका रिश्ता क्या है आपस में?
मैं ये समझता हूँ कि हम इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि क्यों बहरीन के मामलात को बहरीन के मामलात काफ़ी अरसे से ख़राब चले आ रहे थे, और अरब स्प्रिंग से पहले ही बहरीन में असेंबली के अराकीन ने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाहात की जाएं और यहाँ पर जमहूरियत और सिविल सोसाइटी को ज़्यादा स्पेस दी जाए, जमहूरियत को ज़्यादा और बादशाह के इख्तियारात कम किए जाएँ, जैसा कि कुवैत में और बाकी अरब छोटी रियासतों में है, लेकिन वहाँ के बादशाह ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने पिछले 10 साल में कई मरतबा असम्बली को बर्खास्त किया, लेकिन फिर क्योंकि फिर अक्सरियती असम्बली अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती थी और वो अपना ये मुतालबा दोहराते थे। मैं समझता हूँ कि अरब स्किपिंग जब शुरू हुई है तो उससे पहले आगाज़ उसका ट्यूनिस से नहीं बल्कि आगाज़ उसका बहरैन से हुआ कि यहाँ के अवाम ने ज़्यादा जमहूरियत, इंसानी आज़ादियों और खुलेपन के लिए मुजाहरे किए और इस हद तक मुजाहरे बढ़े कि वहाँ का जो पर्ल स्केयर था, वहाँ पर्ल का जो निशान था और वो समझते थे कि ये बहरैन का कौमी निशान है, वहाँ उस रातों रात उन्होंने उस निशान को ख़त्म किया और उसको मैदान में बदल दिया, लेकिन उसके बावजूद मुजाहरे जारी रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब अगर बहरैन के बादशाह का पुराना, वो उनके तकरीबन पिट्ठू बादशाह हैं और ये शेख खलीफा फैमिली पुराने उनका सऊदियों से ताल्लुक़ है, और जब सऊदी अरब में शरीफ मक्का की हुकूमत ख़त्म हुई और आले सऊद वहाँ पर आए तो ये आले खलीफा ने उनकी टैक्टिकल सपोर्ट की थी और उनके बहुत पुराना ताल्लुक है इस सिलसिले में, और ये तारीख इस बारे में गवाह है कि कैसे ये एक इन दूसरे इन दो ख़ानदानों का बहुत गहरे बल्कि रिश्तेदारियां तक कायम हुई हुई हैं और उनके मफादात एक हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो स्ट्रेटिजिक मफाद है वो सऊदी अरब का ये है कि सऊदी अरब के जो अरेबियन पेनिनसुला है, जो खित्ते अरब है जिसको अरेबिया कहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो छोटी मोटी रियासतें हैं, बिलखसूस कुवैत है, कतर है, यूएई है, बहरैन है, ओमान है, यमन है, ये किसी भी तरीके पर जमहूरी तजर्बे से न गुजरें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया जैसे कि लोगों ने इराक के जमहूरी तजर्बे को देखा था तो पूरे अरब में जमहूरियत की हवा चल पड़ेगी। और हैरत की बात यह है कि जितनी अरब स्प्रिंग आई है वो वहाँ पर आई है जहाँ सदारतें थीं, जैसे ज़ैनुद्दीन के ट्यूनिस जो सदर था वहाँ पर तब्दीली की हवा चली है, हसनी मुबारक के खिलाफ मिस्र में जो सदर था हवा चली है, यमन में सदर अली अब्दुल्ला साले के खिलाफ हवा चली है, हवा अगर चली है तो वो शाम में सदर बिशारुल असद के बारे में हवा चली है और उनके खिलाफ अरब स्प्रिंग आई है। मैं हैरान होता हूँ कि ये अरब स्प्रिंग बादशाहतों में बिल्कुल ही डिफ्यूज़ हो जाती है, और सऊदी अरब है और यूएई है और कतर है और कुवैत है और बहरैन है और उर्दन है वहाँ और ओमान है, वहाँ की बादशाहतें बिल्कुल महफूज हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनका इस्तेमार से इतना ज़्यादा टेक्टिकल और स्ट्रेटिजिक और तस्वीराती रिश्ता है कि वो किसी भी तरीके पर हकीकी अमरीकी गुलाम और इस्तेमार के हथकंडों अरब हुक्मरानों को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इस्तेमार का और बिलखसूस अमरीका और यूरोप का तसल्लुत का वाहिद तरीका ये हुक्मरान है और उनका सरकर्दा सऊदी शाही ख़ानदान है जो कि सरतासर इस्तेमारी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसराइल के उनसे उनके साथ बराह रास्त ताल्लुकात, अमरीका का इस इलाके में रहना, इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, ये इस बात की ज़मानत है कि अमरीका और इसराइल बिलखसूस सऊदी अरब की मदद से छोटी छोटी अरब रियासतें बरकरार रखें, मुसलमानों की आवाज़ को दबाएं, जमहूरी तजर्बे से गुरेज करें ताकि अग्यार का तसल्लुत मुसलमानों की दौलत पर बदस्तूर और लंबे अरसे तक रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सिद्दीकी साहब। खित्ते के दूसरे मुल्कों में अवाम की हमायत में और आमिर हुकूमत से मुकाबले के लिए फौज उतारी गई, जैसे लीबिया में किया गया, लेकिन बहरैन में अपने जमहूरी हकूक का मुतालबा करने वाले अवाम की सरकोबी के लिए दूसरे मुल्कों की फौज उतारी गई, बहरैन के सिलसिले में यह उल्टा मामला क्यों है?
देखिए, इसमें एक और भी उनको खतरा है, वो ये है वो इस के बहरैन से जो ईरान के ताल्लुकात का जो उनको अंदेशा है और उसकी वजह से वो बहरैन को एक अलग उनका जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी यूरोप के पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाया गया था जब एक ज़माने में जब यहाँ के ऊपर यहाँ के न्यूज़पेपर्स और जो अखबारात और टेलीविजन में इनका कवरेज होता था, जैसे अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब तो बिल्कुल बहरैन का नाम ही नहीं अखबार अखबारात में या टीवी में या किसी और मीडिया में आता, लेकिन उस ज़माने में ये उठाया गया था कि भाई ये तो एक तो वहाँ पे उस ज़माने की बात है जबकि लीबिया में नेटो की बॉम्बिंग हो रही थी, और उस ज़माने में जब जब सऊदी फौजें यहाँ पे बहरीन में आ गई थी और जो तशद्दुद उन्होंने फैलाया था उसके खिलाफ यहाँ पे कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो उसका कोई किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया क्योंकि उसका सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहरीन जो है वो उस वो एक उससे खदशा ये है कि अगर बहरीन में तब्दीली आएगी, हालांकि छोटा सा जजीरा है, उसके डर ये है कि उसके बाद फौरन ही सऊदी अरबिया में भी तब्दीली आ सकती है, और सऊदी अरब में जाहिर तब्दीली के लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा आल सऊद के लिए। तो वो हर तरह की कोशिश यही है कि बहरीन में तब्दीली ना आने दें, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ से फौरन जो चिंगारी जो है वो निकलेगी और वो पूरे उसको सऊदी अरब को भी अपने उसमें उस पर असर करेगी। तो एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये 1971 में बेशक इनको नाम निहाद आज़ादी मिली हो, लेकिन ये इनके बरतानिया के बहुत बड़े पिट्ठू हैं इनके रहे हैं, ये बहरीन के जो आले खलीफा हैं, और इनके और सऊदियों के जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से उनको भरपूर मदद मिली है अपनी गद्दी पर बैठने की, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जब जमहूरियत होगी और जिसमें मेजॉरिटी के जब यहाँ पे अक्सरियत लोगों के जो का हकूक सामने आएंगे, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ईरान से बहरीन के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो एक छोटा ही सा जजीरा सही, लेकिन वो अरब के खित्ते में मिडल ईस्ट में वो ईरान का फिर असर जो है वो बढ़ना शुरू होगा, और एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि सऊदी खानदान को आले सऊद को बहुत बड़ा खतरा है कि यहाँ से जो 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 अब अगर इन्होंने बिल्कुल इस इन ये जो मज़ाहरात हैं और लोगों की जो जो उनकी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स उनको दबा नहीं दिया, तो उसी किस्म की जद्दोजहद जो है वो सऊदी अरब में शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं था। और जहाँ तक हमको ये ताजुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें मगरब ममालिक में तो ये है कि वो ये देखते हैं कि किस चीज़ में उनका फ़ायदा है और इसराइली सहयोगी हुकूमत का फ़ायदा है। उन्होंने देखा कि लीबिया को तबाह बर्बाद करके उसको पर पूरा कब्जा करके और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करके उसमें यह कि उनको करो अरबों डॉलर का तो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे उसको लीबिया को दोबारा से बनाने में, वही जो है काम शाम में हो रहा है। और ये कि इस उम्मीद के पे कि ये जो जो वहाँ के जो बागी लोग हैं वो किसी सूरत से उसमें अपने पावर में आ जाएंगे, तो फिर मगरिब को अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनियों को ये मौका मिलेगा कि वो आके जो है दोबारा से जो जो जंग में जो जो तबाही बर्बादी लगी हुई है उसको ठीक करें और मुल्क से और उसके उसकी दौलत और उसके उनके जो जो भी उनके जो जो मिनरल्स और उनके तेल वगैरह उसको निकालें। तो इसमें बहरीन में जो वो समझते हैं कि इस तरह से अमेरिका की पांचवी फ्लीट वहाँ मौजूद है और वो चाहते हैं कि जो भी स्टेटस को है वो वहीं पर रहे, इसलिए वो उन्होंने हर तरह की आंखें बंद की हुई हैं कि एक बराबर पड़ोसी हम लोग अपनी फौजें भेज के उस मुल्क के आवाम को मैं दहशत गर्दी फैला रहा है और उनको कत्लेआम कर रहा है उस पर उनका, तो मुझे हमको ये ताजुब नहीं होना चाहिए कि एक एक एक, एक मुल्क के सिलसिले में उनका एक एक पॉलिसी है और दूसरे के सिलसिले में दूसरी पॉलिसी है, क्योंकि आखिर में पॉलिसी वही होती है जिसमें उनका अपना फ़ायदा होता है, उनका मफाद होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार आगा मसूद हुसैन साहब से। आगा मसूद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जनाब, बहरीन के अवाम की इनकलाबी तहरीक आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। 2.5 साल से ज़्यादा अरसे से यह तहरीक जारी है, मजमू तौर पर इस तहरीक के बारे में आपका तजिया क्या है? यह तहरीक दब रही है, बढ़ रही है, कहाँ जाकर ख़त्म होगी यह तहरीक?
मैं जनाब आला ये समझता हूँ कि जो जो कुछ भी मुझे जिन जराये से भी तहरीन के बारे में मालूम होता है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तहरीक दबी नहीं है। ये तहरीक जो है वो अपर सरफेस पे और जेरे जमीन जो है वो बिल्कुल जारी है, और तमाम तर ताउती कुवतों की जो भी कारस्तानियां हैं जिस तरह जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं निहत्ते लोगों पर, उसका कोई वाजे असर नहीं हुआ है। और जो खलीफा की हुकूमत है वो अब भी लर्जाबंदाम है, लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त बहरीन में न सिर्फ ये है कि सऊदी अरब की जो है वो फौजें वहाँ मौजूद हैं कॉजवे के जरिए आई हैं, बल्कि अमरीका की जो मुशाफरत है वो भी जारी है, और आपको मालूम है कि पांचवा बहरी बेड़ा भी जो है वहाँ पर मौजूद है। तो मैं नहीं समझ सकता कि वो तहरीक जो है वो दबी है, बल्कि मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम ममालिक इस तहरीक को दबाने के सिलसिले में वहाँ के हुक्मरानों की जो मदद कर रहे हैं वो खुद भी मतलब ये कि बहुत बड़े दबाव में है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि वो तकरीबन कोई 2.25 साल से सीरिया में इनकी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बहरीन से मिलती जुलती है, और उनमें यही मुस्लिम ममालिक जो है वो पैसे के जरिए अस्थाई के जरिए और अमरीकी साम्राज्य की मदद से जो है वहाँ मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे भी कामयाबी नहीं हो रही। अब आप अंदाजा लगाए कि उन्होंने बीबी जैनबुल्ला सलाम उल्लाह के मजार पे जो है वो बाकायदा रॉकेट से हमले किए, इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे ये जाहिर हो रहा है कि वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो इन यानी सरकारे दो आलम की नवासी के मजार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये एक खास किस्म की सोच है, ये आले सऊद की सोच है, और ये आले सऊद की सोच जो है वो कभी भी जो है वो अहले बैत के हक में नहीं रही है। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो अंग्रेजों ने अंग्रेज मुसन्निफों ने जो किताबें लिखी इनसे मुताबिक, दी हाउस ऑफ आले सऊद बड़ी मशहूर किताब है जिसके मुसन्निफ को बाद में कत्ल करवा दिया गया, वो उसने भी यही लिखा है। तो ये जो कर रहे हैं साम्राज्य के कहने पे, मैं आज भी गालिबन आपको याद होगा मैंने पहले भी आपकी खिदमत में आपके प्रोग्राम के जरिए जो कि बड़ा उमदा प्रोग्राम है बड़ा देखा जाता है पाकिस्तान में, मैंने यही अर्ज किया था कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं जो अपने जो साम्राज्य के बिल्कुल कासल ऐसी कर रहे हैं और अपने इख्तदार को बचाने के सिलसिले में उनकी हामी हाँ मिला रहे हैं, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। और ये अभी थोड़े दिन की बात है, हो सकता है कि आज किसी भी तरीके से मुसलमान का खून जो बह रहा है ये रुकने वाला नहीं है। ये खून जो है इसके जुल्म जो कहते हैं ना, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन तमाम ममालिक में जो पैसे के जरिए असलहे के जरिए साम्राज्य की हामी हाँ मिला रहे हैं और मुस्लिम ममालिक में जो है अफरातफरी पैदा कर रहे हैं और वो रास्ता बना रहे हैं साम्राज्य के लिए, ऐसे साम्राज्य जो है वो अपना असर रसूख वहां पर कायम कर ले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा मुमकिन नहीं। आप लीबिया की मिसाल देख लीजिए किस तरीके से लीबिया में ये जाते हैं, ये नहीं बेनगाजी में भी ये नहीं जा सकते, वहां पे मालूम है कि बेनगाजी में अमेरिका के जो है बाकायदा सफारतकार मारे गए। इसी तरीके से आप इराक में देख लें, इराक में नूरुल मालकी की हुकूमत को हटाने के लिए किस तरीके से जो है वहां पर रोजाना बम के धमाके किए जा रहे हैं। तो ये क्या इस बात की गमाजी कर रहा है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, तो ये तो खुद इनके घर में अब आग लगने वाली है। ये समझते हैं कि हम जो है वो अमेरिका हमारी इख्तदार को बचा लेगा और अमेरिका जो है हमें जो है तहफ़ अदा करेगा, अमेरिका की वजह से जो है वो हमारा जो है बोलो बाला मिडिल ईस्ट में हो रहा। मैं ये कहता हूँ कि मिडिल ईस्ट में जिसका बोलो बाला हो रहा है वो तो इसराइल है जो जो मुसलमानों का असली दुश्मन है, और मिडिल ईस्ट के जो वसाइल हैं उस पर तो अमेरिका के साथ मिल के खुद इसराइल की बड़ी निगाह है। और आपको मालूम है भी कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने जो उनका एक जंगजू वजीर आजम है हॉकिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, उसने कहा कि अमेरिका हमला करे ना करे मैं तो ईरान पर हमला कर दूंगा। ये सारी बातें क्या जो बैन अल-अक़वामी सूरत हाल से जिनको अल्लाह मियां ने थोड़ी सी आगाही अदा की है शऊर अदा की है, क्या वो समझ नहीं रहे कि इस पूरे मिडल ईस्ट में साम्राज्य क्या खेल करना चाहता है? लेकिन साम्राज्य को ये भी मालूम है कि बाद ऐसी भी कुवतें मौजूद हैं इस दुनिया में जो उनकी मजामत करेंगी और बड़े खुल के मजामत करेंगी। आप देख के रूस का क्या तरीकेकार है, रूस बाकायदा डटा हुआ है, फिर इसके बाद छोटी मोटी कुवतें हिजबुल्ला है वो भी वहां डटे हुए हैं, फिर सबसे बड़ी बात तो ईरान है कि ईरान पे कितनी 7-8 सैंक्शन लगा रखी है इन साम्राज्यों ने, लेकिन इसके बाद जो ईरान जो है वो खड़ा हुआ है और अपना एक वकार के साथ, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरी दुनिया में चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर हो और या कोई दानिश्वर हो, आप पूछ रहे कि किस मुल्क की इज्जत है पूरे दुनिया में, और लोग ईरान का नाम लेंगे कि ईरान इज ओनली कंट्री दैट हैज टेकन ए स्टैंड अगेंस्ट द इंटरनेशनल इंपीरियल and it is the only country actually who has really challenged the expansion of imperialism in Middle East. तो ये तो एक हमारे लिए तो मतलब उन लोगों के लिए के जो जो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, जो नांगसाखियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी कुव्वत और हौसले का बायस है। तो बहरीन के मसले पर आते हुए मैं ये कर रहा हूँ कि बहरीन की तहरीक जो है वो जारी रहेगी और जो कुछ भी हो रहा है सीरिया में इसके असरात यहाँ भी पड़ेंगे। और मैं बड़े वसूख से आपसे बता रहा हूँ, कहते हैं ना कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो साम्राज्य कुव्वतें हैं जो उनकी कासलेसी कर रही है, उनको हवा दे रही है इन चीजों को, बहुत जल्द आप देखिएगा जो आग दरवाजे पर आई है वो आंगन में भी आएगी और कमरों में भी आएगी जहां बीच में बैठे हुए।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा जी। सफदर रजा साहब, जनाब बहरीन के आवाम में और दूसरे मुल्कों के आवाम में फर्क क्या है कि दुनिया में हर जगह आवाम की बात की जाती है, उनके हकूक की बात की जाती है, हुकूमतों के कानूनी होने का मेयार आवाम की हिमायत को करार दिया जाता है, लेकिन बहरीन के आवाम को जमहूरियत का मुस्तहक समझा जाता है न इंसानी हकूक का, और उनके मुकाबले में एक आमिर शाही हुकूमत का साथ दिया जाता है, उनके बदतरीन शक्ल में उनके शहरी और इंसानी हकूक पामाल किए जाते हैं और दुनिया खामोश रहती है।
मैं ये समझता हूँ कि बहरीन का मसला इंतहाई तवज्जो का तालिब है। देखिए जैसे कि आपने खुद कहा कि पूरी दुनिया में अगर अवाम मुतहिद होकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करें तो हुकूमतें गिर जाती हैं। हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान की मिसालें हैं, ये बरतानवी जमहूरियत के नमूने हैं, लेकिन हमने तो मिस्र और ट्यूनिस में भी ये देखा कि हुकूमतें गिर गई। हमने अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका में के मुकाबलों में देखा कि वहाँ पर अवाम के मुजाहरों से हुकूमत गिर गई। लेकिन जहाँ पर न सिर्फ ये कि वो हुकूमत बरकरार है बल्कि वेस्ट ने जो सादा सा एक बयान जारी कर देते हैं, उन्होंने बहरीन के अवाम को इस काबिल भी नहीं समझा कि अवाम की जमहूरी जद्दोजहद के बारे में, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को तो छोड़िए, वहाँ की ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो जनीवा में है, वहाँ ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, जो मगरबी ममालिक हैं बिलखसूस यूरोप और अमरीका हैं, उन्होंने कभी भी बहरीन के अवाम की हिमायत नहीं की। हैरत की बात है कि और जगहों पर तो आप किसी मुल्क में मदाखलत कर दे तो आप शोर शराबा करके उस पर सैंक्शंस लगाते हैं, लेकिन एक मुल्क ने बहरीन के अवाम के खिलाफ खुली जारियत की और टैंक दाखिल हुए और बिकतर बंग गाड़ियां दाखिल हुई, और आज भी सऊदी अरब की फौजें बहरीन में हैं, लेकिन किसी ने कोई कालम नहीं लिखा, कोई खबर, कोई हंगामा, कोई टेलीविजन, कोई अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ कि बहरीन के अवाम इस लिहाज से इंतहाई बदकिस्मत हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद, यानी कि इसमें सिर्फ एक फिरके की बात नहीं, बहरीन के अवाम की एक बड़ी तादाद जिसमें शिया नहीं बल्कि सुन्नी और सारे तबकों के लोग शामिल हैं, वो इस जाबिर अल खलीफा खानदान के खिलाफ हैं, वो उस हकूमत को ख़त्म करके जमहूरी आज़ादियाँ चाहते हैं, लेकिन आज़ादी पसंद मगरबी मुमालिक ने उनकी एक आवाज़ नहीं सुनी। मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में बहरीन से इंतहाई मुनाफिकाना सलूक किया जाता है, और हमें डुअलिटी और दो रुखी पॉलिसी नज़र आती है कि आप शाम की आवाम की हिमायत में तो मगरबी मुमालिक उनको असलाह भी दें, अरब मुमालिक वहाँ असलाह भी दें और अक्वामे मुत्तहिदा में और दूसरे फोरम्स पर भी बात की जाए, लेकिन क्या वही आज़ादियाँ जो कि शाम की आवाम तलब कर रहे हैं, क्या वही आज़ादियाँ बहरीन की आवाम के लिए नाजायज़ हैं? क्या वही हकूक जो आप दूसरे अरब मुल्कों को देते हैं, क्या वही हकूक बहरीन की आवाम पर हराम हैं? क्या वही तरीक़ेकार जो कि आप दूसरे, तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि अक़वामे मुत्तहिदा की, मग़रिबी ममालिक की, अरब मुल्कों की, बल्कि मीडिया और सिविल सोसाइटी की मुनाफ़िकत और दो रुखी पॉलिसी भी बहरीन के बारे में खुल के सामने आ रही है।
बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जनाब बहरीन की तहरीक के ताल्लुक से शुरू में ये कोशिश की गई कि इस तहरीक को शिया तहरीक का नाम दिया जाए और ये कहा जाए शिया सुन्नी के हवाले कर दिया जाए बहरीन के इनकलाब को, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है और हत्ता ये 14 अगस्त से जो तहरीक तमर्रुद शुरू करने का ऐलान किया गया है उसमें जितनी भी शिया तंजीमें हैं वो भी और सुन्नी तंजीमें हैं वो भी, अहले सुन्नत के जो वहाँ पर कबाइल हैं उनके सरदारों ने भी इस तहरीक की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। तो और इससे पहले कई बार बहरीन के उलमा और बहरीन के जो इनकलाबी रहनुमा ये ऐलान कर चुके हैं कि ये पूरे बहरीन के पूरे अवाम की तहरीक है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, और इसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनमें सुन्नी हजरात भी शामिल हैं। इसके बावजूद आप ये देखें कि दुनिया ने बहरीन के अवाम को जबानी और अखलाकी हिमायत का भी मुस्तहक नहीं समझा है, वजह क्या है?
जी भाई देखिए, इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने जैसे मैंने अर्ज किया था कि इसमें जो 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 सबसे बड़ा खतरा है वो सऊदियों को है, और वो उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि जो सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब में भी आप देख लेना कि जो जो तहरीकें वहां पे हो रही हैं उनके ईस्टर्न प्रोविंसेस में, उसमें उसमें सुन्नी भी शामिल है और शिया भी शामिल हैं, लेकिन उसको उन्होंने शिया तहरीकों का नाम दिया हुआ है। एक उन्होंने एक तरह जब जब से इराक में ये मसला खड़ा किया अमेरिका के जब 2003 में वहां पे हमला करके, और जब शिया और सुन्नियों में कभी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, और उन्होंने वो उसको बहरहाल कर दिया, और तो उससे अमेरिका को और बरतानिया को और नेटो को बड़ा फायदा हुआ क्योंकि हम आपस में लड़ना शुरू कर दिया। हमने वही चीज जो है वहां पे शुरू हुई है शाम में, जैसा आपके इल्म है कि वो शियों और सुन्नियों के खिलाफ हो रहा है। अब ये चीज ये चाहते हैं कि यहां के ऊपर भी ये बात पैदा की जाए, लेकिन जैसा आपने फरमाया कि जो जो भी जो जो भी जो वहां के जो कबीलों के सुन्नी कबीलों के सरदार हैं वो भी, और जो शिया कबीलों के सरदार हैं वो भी, दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम 14 अगस्त को से ये शुरू करेंगे, और इसमें हमारा कोई आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। और इसी की तो सबसे बड़ी फिक्र अब इससे ये जो है, जैसा मैंने अर्ज किया था कि अब ये जब एक दफा ये शुरू होगा, ये एक तरह का समझ लें एक रेवोल्यूशन ही समझ लीजिए, एक तरह का इनकलाब, तो वो इनके वो उनको समझ में नहीं आएगा कि उसको कैसे काबू करें। ये तो छोटी सी बात वैसे मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो बहरीन की ग्रां प्री होती थी जो पिछले साल उन्होंने, और जो फार्मूला वन मोटर रेसिंग जो पिछले साल उन्होंने बंद कर दी थी इस वजह से कि एहतजाज वगैरह हो रहे थे, इस साल उन्होंने बावजूद इसके कि एहतजाज लोगों के थे उन्होंने वो की, वो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि यहाँ पे अमन अमान है, और ये कि हम जो भी कुछ अगर थोड़ा बहुत जो परेशानी है उसको हम अपने उसको काबू में करेंगे, और हजारों लाखों जो थे बाहर के जो विजिटर्स वहां पे आए वगैरह, तो ये तो सब ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब ये आखिरी ये मरहला है कि जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से इनको अल खलीफा की इनके कबीले को उनको खानदान को बचाया जा सके, ये नहीं होगा। और हमको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ के मगरब में कि आया कि इनकी इनकी जो इंसानी हकूक की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या हुकूमती तौर पर इनका कि इनका क्या रवैया है। अब हमको ये देखना चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं, और अवाम जो है इसके बावजूद कि अमरीका और मगरब की तरफ से जाहिर है उन्हीं की ईमा पे तो सऊदी अरब के जो फौजी वहाँ के ऊपर आए हैं और जो अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हथियार वगैरह जो बहरीनी फौजों को दिए गए हैं वो भी तो सही बरतानिया वगैरह ने उनको दिए हैं, जो 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 के जो, 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 जो गैस गैस जिसके अंदर जहर भी शामिल है, तो सब यूरोप से इनके पास जाता है। उन्होंने उसमें किसी चीज़ में कमी नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं रोका। उसके बरखिलाफ आप देखिए कि जब जब शाम में ये जब सब कुछ सिलसिला शुरू हुआ तो मगरिब से जो कुछ किस्म की जो यानी फौजी जो चीज़ें असलहे जाते तो सब बंद हो गए बशार अल असद की हुकूमत को, बल्कि वो सारे को जो जितने असलाह है और फौजी जो इमदाद है वो बागियों को दे दी गई है। तो मुझे हमको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मगरिब की तरफ से इसमें क्यों इतनी खामोशी है, या ये कि अगर मैं तो कहता हूँ अगर इनके यहाँ पे हमारे बरतानिया में या यूरोप में अगर टेलीविजन के ऊपर इसके इसका कोई कवरेज आए भी या रेडियो पे या अखबारों में, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो जो लोगों को वहां पे खड़े होके अपना हक मांगना है वो मांगना चाहिए उनको। और मैं तो ये बस ये मुझे उम्मीद ये करता हूँ कि जिस किस्म की लीडरशिप उनको मिलेगी उसके ये जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह और जो रेवोल्यूशन यानी जो इंकलाब शुरू होगा वो सही लीडरशिप होने चाहिए, उसमें आपस में कोई मसला नहीं हो आप, ताकि ये आखिर में वो जो जो इनकी जो 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 उनका जो गोल है वो उस तक वो पहुँच जाएँ, और यही है कि उनकी इनकी आले खलीफा की खानदान को हटाकर और एक जमहूरी हुकूमत वहाँ पर कायम की जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। आगा मसूद हुसैन साहब, आप लाइन पर हैं जनाब? जनाब, बहरीन के इनकलाबी रहनुमाओं ने 14 अगस्त से तहरीक तमर्रुद शुरू करने का ऐलान किया है और यह ऐलान किया है कि उनकी सिविल नाफरमानी की यह तहरीक बहरीन के इनकलाब के कामयाबी से हमकनार होने तक जारी रहेगी। आप कितने पुरुम्मीद हैं उनकी तहरीक तमर्रुद की कामयाबी से?
देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है और उन खलीफा की जो हुकूमत है और उनके खानदान के लिए, उनके कबीले के लिए, और वो तो बिल्कुल मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस खबर के आते ही जिसको दबाने की बहुत कोशिश की गई वो लर्जा मंदा में, उनको मालूम है कि अभी जो तहरीक चलेगी ये रुकने वाली नहीं है। मुझे इस तहरीक से जो एक बड़ा हौसला मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो ताऊती कुव्वतें जो साम्राज्य की जो कासलैची कर रही हैं और जो इराक में भी मौजूद हैं और शिया सुन्नी फसादात करा रहे हैं, इसके बाद सीरिया में मौजूद हैं, उनकी बड़ी हौसला शिकनी होगी क्योंकि साम्राज्य किन किन महाज पे जो है ना अपने इन जो जो इनके एजेंट हैं, जो एजेंट वो मालिक हैं, इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकेगा। तो मेरी अपनी राय यह है कि ये जो तहरीक है उसको खलीफा के जो एक ताऊती जो एक इनका तबका है वो यकीनी तौर पर बड़े सरदारी तरीके इख्तियार करेगा, जुल्म के तरीके इख्तियार करेगा और हो सकता है कि उस तहरीक के शुरू होने से पहले उनके जो बहुत ही अहम रहनुमा हैं उनको वो गिरफ्तार कर लें या फिर यह कि वो उनको गायब करा दें। क्योंकि आप मालूम है कि अरब मालिक में अपने जो उनके गनीम होते हैं, उनको जो दुश्मन होते हैं और उनको वो गायब कराने का बड़ा उनके पास बड़ा हुनर है, तो हो सकता है कि वो ये भी करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तहरीक शुरू होने वाली है 14 अगस्त से, उनके रहनुमाओं को इन हकायक का पूरा इल्म होगा क्योंकि वो गुज़श्ता 2.5 साल से बल्कि इससे ज्यादा अरसे से जो है वो इनकी इन तमाम तरीक़ेकार को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और यकीनी तौर पर क्योंकि ये इनकलाबी लोग हैं और ये पहले ही से भी इनके जुल्म व तशद्दुद को बर्दाश्त कर चुके हैं, तो चुनाचे उन्होंने भी कोई अपनी यकीनी तौर पर स्ट्रेटेजी, कोई अपनी फैमिली जरूर बनाई होगी। तो मैं बहसियत एक मामूली से साहसी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक जो है अब दबने वाली नहीं है और इससे पूरे मशरक वस्ता में एक नई लहर उभरेगी। और मैं ये भी इस सिलसिले मुझे यकीन है कि सीरिया में जो इनके किराए एजेंट लड़ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के एजेंट भी शामिल, तालिबान जो पहुंचे हैं वहां पे, तो ये भी थोड़ा सा मतलब ये कि हरासा परेशान होंगे क्योंकि देखिए बात है कि ये जितने भी अरब मालिक हैं इनके पास जो वसाइल बेपना वसाइल हैं लेकिन वो भी एक जगह जाके महदूद हो जाते हैं, तो किन किन महाज पे जाके ये पैसे खर्च करेंगे, असले खरीदेंगे और एजेंटों को भेजेंगे। तो ये तो एक बहुत हौसला अफजा बात है कि 14 अगस्त को जो बहरीन में दबे हुए अवाम की और जमहूरी हकूक की बहाली के सिलसिले में, आइनी हकूक की बहाली के सिलसिले में जो जद्दोजहद होगी वो साम्राज्य को हिला के रख देगी और ये जो इनके एजेंट हैं जो मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों का लड़वा के एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, फिरका वारियत को फरोग दे रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा हौसला शक्ति होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सफदर रजा साहब। एक मिनट का वक्त हमारे पास रह गया है, बहरीनी अवाम की तहरीक तमर्रुद जो 14 अगस्त से शुरू होने वाली है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मिनट का वक्त है।
मैं समझता हूं कि लोगों के जज्बे हुर्रियत और आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। कुछ अरसे तक उन पर तशद्दुद करके, फौजी तसल्लुत करके, बाहर से आप इमदाद मंगा कर, और जैसे कि अरब मुल्कों में रिवाज है, जैसे सऊदी अरब ने पिछले साल कई अरब सऊदी रियाल अपने लोगों को रिश्वत के तौर पर दिए थे वजीफे के नाम पर, कुछ अरसे के लिए ये इकदाम आप उस आई हुई मुसीबत जिसको अवामी तूफान है उसको टाल तो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, उनके दिलों में शम आज़ादी को बुझाया नहीं जा सकता। और आज बहरीन है, 14 अगस्त के बाद हम इस खत्ते में बड़ी तब्दीलियाँ देखना शुरू करते हैं जो इस्तेमार के खिलाफ जाएंगी। आज बहरीन है, कल सऊदी अरब है और जल्दी ही अरब बहार अपना रंग दिखाएगी और शगुफा जमहूरियत और अवामी आज़ादियों और लोगों की आज़ादियों और लोगों के ख्वाबों की ताबीर जल्द ही पूरे अरबिस्तान में तलू होने वाली है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, 14 अगस्त से बहरीन के अवाम ने मुल्कगीर सतह पर तहरीक तमर्रुद सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। हमारी दुआएं बहरीन के अवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह 14 अगस्त की इनकलाबी तहरीक एक अहम मोड़ साबित होगी बहरीन के इन अवाम की इनकलाबी तहरीक में और उन्हें भी अपने बुनियादी शहरी और इंसानी हकूक के उसूल, आमरियत के खात्मे और जमहूरियत के क्याम में कामयाबी मिलेगी। इस बीच फरीजा बनता है दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद हक परस्त अवाम और आज़ादी और हुर्रियत पसंदों का और समाजी तंजीमों का कि वो बहरीन के अवाम की इनकलाबी तहरीक की खुल के हिमायत करें और कम से कम 14 अगस्त की जो उनकी तहरीक तमर्रुद शुरू होने वाली है उसकी भरपूर हिमायत का ऐलान करें ताकि बहरीन के अवाम को ये एहसास न रहे कि दुनिया ने उन्हें अपनी ज़बानी हिमायत से भी महरूम रखा है। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।